Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena.
Namaskar. आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम शेयर बाजार और अर्थ जगत की खबरों पर चर्चा करेंगे और आज के समाचारों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एस पी शर्मा। डॉक्टर शर्मा नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
वार्म वेलकम एस पी।
थैंक यू सर।
पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख।
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस एंड मार्जिनली डाउन, सेंसेक्स स्लिप्स ओवर 80 पॉइंट्स, निफ्टी क्लोजेस बिलो 24,800। मोस्ट एशियन मार्केट्स एंड इन नेगेटिव टेरिटरी, यूरोपियन इंडेक्सेस ट्रेडिंग विद कट्स। And global crude oil prices climb over 1%, Brent crude trading over $77 per barrel.
Gharelu share bazaron mein mamooli giravat dikhai di, Sensex 80 ank ludka, Nifty 24,800 ke niche band hua. Asia ke adhikansh bazaron mein giravat darj ki gayi, Europe ke bazar bhi niche dikhai diye aur kacche tel ke moolyon mein 1% se adhik ki tezi darj ki gayi. ब्रेंट क्रूड $77 प्रति बैरल से अधिक पर कारोबार कर रहा था। और आज की पहली खबर, एशिया के बाजारों में कमजोरी के बीच घरेलू शेयर बाजार भी आज उथल पुथल भरे कारोबार में मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। 30 शेयरों पर आधारित बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 83 अंक यानी 81,362 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19 अंक की मामूली गिरावट के बाद 24,793 अंकों पर आ गया। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में भी गिरावट दिखाई दी। मिडकैप सूचकांक में 1.6% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.7% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।
The benchmark domestic equity indices ended marginally down in a choppy trade today, mirroring weakness in Asian markets. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, lost 83 points to close at 81,362. The National Stock Exchange, Nifty 50, slipped slightly by 19 points to settle at 24,793. The broader market indices at the BSE closed with deeper cuts. The mid-cap index shed over 1.6% and the small-cap index declined more than 1.7%.
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 19 में गिरावट आई। बड़ी कंपनियों में अडानी पोर्ट्स का शेयर 2.6%, बजाज फाइनेंस का शेयर 2% से अधिक और टेक महिंद्रा का शेयर 1.9% से अधिक गिरा। बढ़त दर्ज करने वाली प्रमुख कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर लगभग 1.7% और टाइटन का शेयर 0.7% से अधिक और लॉर्सन एंड टूब्रो का शेयर आधा प्रतिशत से अधिक बढ़ा.
इन सेक्टोरल इंडेक्सेस एट द बीएसई ऑटो बक्ड द ट्रेंड राइजिंग ओवर 0.4%, व्हाइल ऑल अदर सेक्टर्स एंडेड इन नेगेटिव टेरिटरी. Among the top laggards, services, realty and utilities lost over 1.6% each, power dropped more than 1.2% and metal dipped almost 1.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,018 companies declined, shares of 959 companies advanced, while shares of 140 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 35 companies hit their 52-week high, while 43 hit their 52-week low.
और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए में आज 26 पैसे की गिरावट आई. एक डॉलर की कीमत 86.73 रुपए दर्ज की गई. दुनिया की अन्य छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 98.94 पर चल रहा था. डॉक्टर शर्मा, शेयर बाजार का जैसा हाल हमने आज देखा, मामूली गिरावट आई, लेकिन जितनी उथल पुथल बाजार में चल रही है, कल भी लगभग इसी तरह का सीन था बाजार में, तो आप इसको क्या आपको कारण मुख्य लगते हैं? जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो, या देश के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार को आगे नहीं बढ़ने दे रहे?
इसमें जो मेजर फैक्टर्स हैं वो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स ही हैं. डोमेस्टिक लेवल पे कोई ऐसी चैलेंज नहीं है जिसकी वजह से मार्केट्स ऐसा बिहेव करे. लेकिन मार्केट्स में जो एक साइडवेज की अप्रोच है, अभी मार्केट्स थोड़ा सा अपसाइड लेती हैं 100-150 पॉइंट्स, उसके बाद फिर वापस, मतलब जिसको हम एक चौपी ट्रेड कहेंगे, वैसी एक स्थिति बनी हुई है. क्योंकि मार्केट्स अभी कोई डायरेक्शन नहीं ले पा रही, कन्फ्यूज्ड है कि जियोपॉलिटिकली क्या होने वाला है. बहुत बड़े बड़े समाचार हर रोज आ रहे हैं, जो ईरान और इजराइल को लेके और यूएस का इंटरवेंशन जो अभी देखा गया है. तो एक भय की स्थिति भी है और एक फंडामेंटली स्ट्रांग स्थिति भी है कि हमारे जो अभी जो हमने डेटा देखा पीछे, हमारे जो ग्रोथ फंडामेंटल्स, हमारा जीडीपी नंबर्स और इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन सिग्निफिकेंटली, वो सब एक पॉजिटिव जो मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं, जो मार्केट को गिरने से बचाते हैं. लेकिन एक ग्लोबल लेवल पे एक जिसको हम बैरिकेड्स कहेंगे, मार्केट्स ऊपर जाने के लिए भी उस तरीके से अपना पोजीशन नहीं ले पाती हैं. तभी जब भी ऊपर जाती हैं तो कोई ना कोई चैलेंज उसी टाइम पे रात में या दिन में हम देखते हैं कि कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से मार्केट्स अगेन थोड़ा इम्पैक्ट फील करती हैं. तो
डॉक्टर शर्मा, एज वी रेड आउट ऑल्सो द इंडियन इक्विटी मार्केट्स रादर द इंडेक्स एक्सपीरियंस्ड रेंज बाउंड मूवमेंट टुडे विद अ नेगेटिव बायस एज the cautious sentiments, as you very rightly elucidated a while back, spread across the globe, driven by concerns over potential U.S. involvement in the Middle East conflict. Apart from that, there was what was affecting the investors' mood was the Fed's decision to keep interest rates unchanged while signaling persistent inflation and slower economic growth, which weighed on software experts' stocks today. So what's your take on that?
Yes, you rightly said cautious approach. A cautious approach with a lot of resilience also. Our markets are resilient, supported by, as I earlier said, with the strong fundamentals. So the cautious approach is working. Markets are able to take advantage of that resilience, that markets are not falling on the negative cues from the international economy. So at this juncture, I believe the decisive factors will be from the global side, from the geopolitical developments, and second, the inflation and Fed rate trajectory in the US that will explain the futuristic scenario. Because now we have addressed our challenges. Earlier, inflation was a major challenge. Now inflation is coming down significantly, and inflation is at around 2.8%, which is less than 3%, more than expectations fall in the inflation trajectory. So other fundamentals, like we have FDIs at 3 years high, $81 billion was the volume for the last financial year. Exports are at new highs, and WPI inflation is also less than 1%. So all macroeconomic fundamentals are creating more and more resilience for the Indian market. But the challenges at the global level remain, which are putting cautious approach for the markets. So okay, that is the scenario in a nutshell, that strong resilience at the domestic level, but challenges at global are making cautious approach.
Lekin Dr. Sharma, jis tarah market behave kar raha hai, to jo retail investor uske samne to kafi confusion ki sthiti hai ki wo abhi bazaar mein utre ya na utre. Aap kya salah dena chahenge?
Dekhiye, jo retail investor hai usko market mein जो इन्वेस्टमेंट है तो बने रहना चाहिए. न्यू एंट्रेंट के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि अभी मार्केट से में एंटर ना करें, थोड़ा मार्केट से दूर रहें. हाँ, ये जरूर है कि अगर मार्केट करेक्शन लेती है, मार्केट्स में डिप आता है, तो उस टाइम पे उनको एंटर करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे मार्केट्स ने वापस अपने लेवल्स अचीव करने हैं. ये जो न्यूज बेस्ड वॉलिटिलिटी है, जो आज मार्केट्स को एक बूस्ट मिला, अगले ही दिन कोई ऐसी नेगेटिव चीज आ गई जिससे मार्केट्स वापस जो है डिसेलिरेट करके उसी लेवल पे आ गई, तो ऐसा एक वॉलेटाइल माहौल जो है वो मार्केट में बना हुआ है. तो न्यू रिटेलर्स के लिए यही सजेशन है कि उनको इस लेवल पे नहीं एंटर करना चाहिए. उनके लिए जो करेक्शन, जैसे अभी मार्केट्स ने कुछ महीने पहले 22,000 का स्तर छुआ था, निफ्टी ने 22 से भी थोड़ा सा नीचे गया था, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और उसके बाद ही एक महीने में रिकवर करके मार्केट्स 25,000 से ऊपर भी गए. जैसे ही ग्लोबल लेवल पे थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, मार्केट्स वापस अपने उसी दौर में राइज लेती हैं, क्योंकि हमारे तो फंडामेंटल स्ट्रांग है. हमें चैलेंज जो है वो एक आगे की तरफ जो एक रेजिस्टेंस है, जो बैरिकेड्स हैं, वो ग्लोबल लेवल पे ही हमें दिखाई देते हैं. तो ये एक ऐसा सिनेरियो बना.
सो डॉक्टर शर्मा, आई विल गिव यू टू सिनेरियोस.
राइट,
वन सिनेरियो इज दैट US jumps in and there is an escalation in war. In that scenario, what should India be doing and how will we be affected? Second scenario is there is diplomacy that works and the situation kind of cools down. In that scenario, what happens? How soon can the markets come back to normalcy?
First scenario is very, very challenging and worrisome, because if US enters, then that situation will not be favorable for anyone in the world. Every economy will be impacted, like the Lehman crisis or the coronavirus. So this will again impact the each and every country through various channels, like the trade channel or the financial channel or other channels. But scenario two is a little bit favorable.
Is what we would expect.
Yes, we expect that we should approach for peace, and discussions must be at the top of the agenda with the fruitful outcomes. So that will be a scenario that is favoring the people, the welfare, and the countries to maintain their possible growth scenarios or the possible support to the people.
Okay, and what do you expect in the coming week? Volatility will continue?
Volatility,
but we have not experienced major volatility.
Yes, we have not experienced major volatility. As I said, we are resilient. We are stopping the volatility because markets are not going down on the basis of the support of fundamentals. But there are challenges at global. If the challenges are dominating again and deepening geopolitical developments are impacting, then the markets may fall further from the current levels.
जी, और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं. एशिया के अधिकांश बाजारों में आज गिरावट दिखाई दी. हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स लगभग 2%, जापान में टोक्यो शेयर बाजार का निकेई 1%, चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स लगभग 0.8% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.6% से अधिक गिरा. दूसरी ओर दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में लगभग 0.2% की तेजी दर्ज की गई. यूरोप के अधिकांश शेयर बाजार भी आज दिन के कारोबार में नीचे की ओर थे. फ्रांस के कैक में 0.9% से अधिक, जर्मनी के डेक्स में 0.6% से अधिक और लंदन के फुटसी में 0.3% से अधिक की गिरावट चल रही थी. इस बीच बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बढ़ते मुद्रास्फीति दबाव के बीच बैंक दरों को 4.25% बनाए रखने का फैसला किया. हालांकि बैंक ने संकेत दिया कि अगस्त तक वो ब्याज दरों में और अधिक कटौती कर सकती है। मौद्रिक नीति समिति ने 6-3 से फैसला किया कि मई की कटौती के बाद उधार लागत को उसी स्तर पर बनाए रखा जाए। समिति ने कहा कि पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ने से दुनिया में अनिश्चितता बनी हुई है। इससे पहले नॉर्वे की केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती के बाद यह दर 4.25% हो गई। कोविड महामारी के बाद बैंक ने पहली बार ब्याज दरों में कटौती की है। स्विस नेशनल बैंक ने भी 25 आधार अंकों की और अधिक कटौती की घोषणा की। फरवरी के मुकाबले मई में मुद्रास्फीति लगातार स्थिर रहने के चलते बैंक ने यह फैसला किया। अब बैंक की ब्याज दर 0 हो गई है। डॉक्टर शर्मा, आप क्या कहेंगे? एशिया के सभी बाजारों में, दक्षिण कोरिया को अगर छोड़ दें तो सभी बाजारों में हमें गिरावट दिखाई दी, और यूरोप में भी लगातार यही ट्रेंड है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नॉर्वे से लेकर और स्विट्जरलैंड तक जैसी खबरें आ रही हैं, तो आप क्या इसमें कहना चाहेंगे?
ऐसी ही स्थिति है, जो जैसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स तो है ही हैं जो बहुत ही वर्सनिंग फेज में है। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन का अभी भी जो दौर है वो ख़त्म नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे इन्फ्लेशन अभी भी इम्पैक्टफुल है, और वहाँ के सेंट्रल बैंक्स जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि जो ब्याज की दर है उसको कम किया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन एक स्टिकी जोन में अभी भी बना हुआ है। जैसे यूएस में भी अभी इन्फ्लेशन उस कंफर्टेबल जोन में नहीं आया है जहां पे उनको चाहिए। दैट्स व्हाई फेड दे आर कीपिंग द इंटरेस्ट रेट्स एट द सेम लेवल। तो आने वाले टाइम में जो इन्फ्लेशन का सिनेरियो है वो भी मैटर करेगा कि उसमें कुछ सॉफ्टनिंग सिनेरियो बनता है या इन्फ्लेशन वैसे का वैसा ही स्टिकी रहता है। तो ये एक मेजर कंसर्न भी हो सकता है।
मूविंग ऑन, द यूएस स्टॉक्स क्लोज्ड मिक्स्ड ऑन वेडनेसडे आफ्टर फेडरल रिजर्व चेयर जेरेमी पावेल सेड इन्फ्लेशन एंड गुड्स prices was expected to go up over the summer as President Donald Trump's tariffs work its way to consumers. The Dow Jones Industrial Average slipped marginally by 0.1%. S&P 500 closed nearly unchanged, while Nasdaq Composite added over 0.1%. Meanwhile, the U.S. Federal Reserve's Federal Open Market Committee, FOMC, has kept interest rates unchanged for the fourth consecutive time at 4.25% to 4.5% range in its latest meeting. The American Central Bank has maintained the same level since December 2024 amid ongoing geopolitical tensions and trade-related volatility. The Fed said in its policy statement that although swings in net exports had affected the data, economy grew at a solid pace with low unemployment rate, but inflation remained somewhat elevated. According to the Fed's dot plot chart projections, the median of Fed officials expect to lower the key benchmark interest rates by 50 basis points in 2025, indicating that there could be two rate cuts seen later this year. Economic projections by participants from the meeting pointed to further stagflationary pressures, along with downgraded growth expectations and higher inflation forecasts. It projected the gross domestic product, GDP, to advance 1.4% this year, a drop from the earlier 1.7% forecast in March. The core PCE inflation is projected to reach 3% by the end of the year, while unemployment rate is expected to rise from its current level of 4.2% to 4.5% this year. And we also have information on the crude going forward. Crude oil prices rose today after Israel and Iran continued to exchange missile attacks, and U.S. President Donald Trump's stance on the conflict kept investors on edge. Brent crude was trading over 1.4% up at $77.80 per barrel. WTI crude was trading 1.7% up at $76.42 per barrel when reports last came in. Meanwhile, U.S. crude oil stockpiles fell sharply last week, posting their largest decline in a year, while gasoline and distillate inventories rose. According to the Energy Information Administration data, crude inventories fell by 11.5 million barrels to 420.9 million barrels in the week during the end of 13th of June. Now it's time for us to go over live to our Dubai correspondent, Vinod Kumar. Vinod, are you there? We will be joined by Vinod in a short while from now. Meantime, what's your take on the Fed's decision? You did mention it a while back to hold rates steady, coupled with what Jeremy Powell said about warning on tariffs as well. It's surprising that he's brought in the president's tariffs into picture over here. This underscores the delicate balance facing policymakers guiding the economy towards continued expansion. In such a scenario, how do you estimate for growth this year in the U.S. While they are lifting forecasts for unemployment and inflation?
Growth is decelerating as they have projected at 1.4% for the current year, 2025, because inflation is becoming more and more sticky at these levels. Earlier expectations was that inflation will come down from 2% below the 2% mark, but the Trump tariffs has created again volatility in the global markets and rise in the prices of the goods and services because of the tariff scenario. So going forward, we are not expecting any significant deceleration in the inflation trajectory because of these developments, recent developments of the Trump tariffs, and Fed may remain rigid at these points, but they are announcing that they will cut the rates by 50 basis points.
We are joined in now by Vinod Kumar, our Dubai correspondent. Welcome to Market Mantra, Vinod.
Yes.
Vinod, tell us about the impact of the evolving conflict in West Asia on the crude oil prices.
Definitely, there is an uncertainty surrounding the conflict evolution, which can lead to increased volatility in these oil markets. These traders are highly sensitive to any news of escalation or de-escalation. Already, that has been a risk premium has already set in this particular price of the WTI and Brent crude oil. For instance, Goldman Sachs has suggested a $10 premium due to lower Iranian supply, which supplies around 4.25% of the global oil. And we have to analyze how this pans out. An initial spike can be expected, which is already factored into the current space, even without direct attacks on any oil infrastructure. We must know that the South Pars oil field has already been attacked. This has been already factored into the current oil prices. And for a moderate level of escalation, like the premium that has been set by the Goldman Sachs, it can go up to like 75 to 80, maybe higher than that 95, and it can settle at that place. If there's a significant disruption, like the closure of Strait of Hormuz or major infrastructure attacks in any of these oil fields in this Persian Gulf, which Iran might do, because if U.S. enters a war and if Iran feels there is an existential threat to its existence, then all hell can break loose. In that case, the oil price can surge up to maybe $120 per barrel, and it can even surpass the 2008 record high of $150 per barrel. But that is a very unlikely scenario because of main two reasons. One, Iran attacking or blockading the Strait of Hormuz will be like a self-sabotage, because Iran's own oil and Iran's own other non-oil trade happens through this path, especially to the China and other countries of its market exposure. Second, the U.S. is having a permanent base in Manama, Bahrain, the U.S.'s sixth fleet. It's very difficult for Iran to block this Strait of Hormuz in the presence of this U.S. fleet. Third thing, U.S.'s limits carrier strike group has already started from South China Sea to this Strait of Hormuz. And due to this presence of U.S. Naval fleet, it will be very difficult for Iran to block the Strait of Hormuz, and and the oil price may not spiral as much. But definitely we can see that the oil price may settle within the $75 to $85 mark in the short term.
He's hoping for the best. Thank you so much, Vinod Kumar, for joining us.
All right, thanks.
In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading over 0.2% down at 49,490 rupees per 10 grams, while silver 999 fine was trading over 1% down at 1,07,830 rupees per kilogram a short while ago.
और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.23% गिरकर 99,306 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. वहीं जुलाई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 1.21% गिरकर 1,07,251 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था. और चलते हैं.
We just would like to quickly take your views on where the gold is headed.
Gold, I am always bullish on gold, as mentioned in many discussions earlier. So gold prices will remain intact, and because now the geopolitical developments and other scenarios are very, very favorable for the rise in the gold prices.
जी, और चलते हैं अगली खबर की ओर. भारत और क्रोशिया ने काफी समय से लंबित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर चर्चा की है. क्रोशिया ने समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए अपना समर्थन दोहराया है और कहा है कि इससे भारत और यूरोपीय संघ दोनों को पारस्परिक लाभ होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोशिया के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की है. दोनों देशों ने कृषि, सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी तथा हिंदी के ICCR चेयर की स्थापना के लिए 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. दोनों देशों ने दीर्घकालिक रक्षा सहयोग योजना की रूपरेखा पर भी सहमति जताई.
The Security and Exchange Board of India, SEBI, yesterday announced a set of important reforms aimed at making the Indian financial markets more efficient, inclusive and investor-friendly. The decision were taken during SEBI's board meeting chaired by Tuhin Kanta Pandey. More on this from our Mumbai correspondent.
One of the biggest changes under SEBI's new measures is that startup founders will now be allowed to retain their employee stock ownership plans, ESOPs, even after their companies go public. Previously, founders were treated as promoters after the IPO and were not eligible for ESOPs. However, to prevent misuse, SEBI has made it mandatory to maintain a one-year gap between the issuance of ESOPs and the filing for an IPO. SEBI also made amendments to the regulatory framework for the social stock exchange, real estate investment trusts and infrastructure investment trusts to enhance ease of doing business. In another key decision, the market regulator approved a new framework for the voluntary delisting of public sector undertakings. PSUs can now be delisted from the stock market more easily, subject to shareholder approval. To attract more long-term foreign capital, SEBI has simplified the rules for foreign investors who invest exclusively in government bonds.
Dr. Sharma, what's your take on the reforms announced by SEBI?
This is very great development, and I would say positive for the founders and the employees. They will remain connected and incentivized by the their respective companies. So I think this will be fruitful in the long-term vision for the founders and employees rather than the short-term exit strategies.
जी, और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. डॉक्टर शर्मा इस कार्यक्रम में भाग लेने प्रमुख खबरों विषयों पर चर्चा करने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू डॉक्टर शर्मा फॉर बीइंग विद अस.
थैंक यू. थैंक यू.
एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, benchmark domestic equity indices and marginally down, Sensex slips over 80 points, Nifty closes below 24,800. Most Asian markets end in negative territory, European indices trading with cuts, and global crude oil prices climb over 1%, Brent crude trading over $77 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.